स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ तो मित्रों, इससे पहले कि हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर की निकटता में आए और उससे आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सर झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आंखों को खोल दें, ताकि प्रभु हम इन आंखों से आपके उन महान कार्यों को देख सकें, हमारे आत्मिक विचारों को, हमारे एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि प्रभु ये वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए। और होने दे पिताजी कि आज जो वचन हम सीखते हैं इसके द्वारा से हम आपके उन महान कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए कि एक एक के जीवन के जरूरतों के मुताबिक प्रत्येक से आप बातचीत करें। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, जो अपने नौकरी की तलाश से परेशान हैं, विवाह के जीवन से परेशान हैं। प्रभु ऐसों पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, ताकि प्रत्येक का जीवन इस बात को समझने पाए कि सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों में है और आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हर एक भाई बहनों के साथ होइए और इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु भोज का मीठा दाखरस हमें स्मरण कराता है कि मसीह ने हमारा मृत्यु का कड़वा कटोरा पिया, और शिमोन पत्रस ने कहा कि वह प्रभु को छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन का वचन तो प्रभु यीशु ही है। यही हमारा भी अंगीकार है। अब यीशु यरूशलेम में है, यह उसके जीवन के अंतिम 6 महीने हैं। आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 से 9 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। यहाँ पर हम पाते हैं कि संसार यीशु का विरोधी है, लेकिन क्यों? क्योंकि मसीह यीशु जगत की ज्योति है, और ज्योति के आ जाने से मनुष्य के अनुचित कार्य प्रकाश में आ जाते हैं। उसके आने से पाप प्रकट हो जाता है और वह पाप को स्वीकार नहीं करता है। यही कारण है कि संसार उसका विरोधी है। मेरे मित्रों, मनुष्य का मन दुष्टता से पूर्ण है। मसीह मानव जाति से प्रेम करता है, इसी कारण उसने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की, और उसके मोक्षक प्रेम ने विरोधी मानव का दिल तोड़ा। यह पौलुस के मन परिवर्तन से भी स्पष्ट है। वह मन परिवर्तन से पूर्व प्रभु यीशु और उसके अनुयायियों का शत्रु था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु को उसका उद्धारकर्ता पाया तब उसका दिल टूट गया, और उसने कहा, जिसे हम गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह क्या ही सुंदर वचन उसने गलतियों की पत्रियों के लिए लिखा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। ध्यान दीजिए कि वह अपने शिष्यों के साथ वहां गया, परंतु पीछे के मार्ग से और संभवतः भेड़ द्वार से, जो उसका आम अभ्यास था। अंतिम बार जब यरूशलेम जाएगा तब वह मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा और मनुष्यों के आगे एक चुनाव रखेगा कि वे उसे स्वीकार करें या त्याग दें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 11 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। मित्रों, यहाँ भी यहूदियों से यूहन्ना का अभिप्राय है धर्मगुरु। यीशु वहां चर्चा का विषय था। यीशु के पक्ष में कुछ भी कहने का अर्थ था पकड़ा जाना, अतः यीशु की चर्चा सार्वजनिक नहीं थी। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7 अध्याय उसके 14 पद में। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। ध्यान दीजिए कि यीशु वहां अकस्मात ही प्रकट नहीं हुआ। झोपड़ियों का पर्व परमेश्वर की योजना में है और उसके फिर से आने की घटनाओं का ब्यौरा भी देता है। उसका पुनः आगमन भी एक आकस्मिक घटना ही होगी। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मित्रों, उसका पुनः आगमन ऐसी ही आकस्मिक घटना होगी। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय और उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। आप फिर से ध्यान दीजिए, यीशु वचन की शिक्षा को कैसे महत्व देता था। हम बार बार देखते हैं कि वह शिक्षा दे रहा था। उसकी शिक्षा सुनकर धर्मगुरु चकित थे, क्योंकि यीशु कभी किसी गुरुकुल में नहीं गया था। उसके विरोधियों ने स्वीकार किया कि उसमें ज्ञान था, और मंदिर के सिपाहियों ने जो उसे पकड़ने गए थे कहा, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हम इसे 45 और 46 पद में पाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु की शिक्षा परमेश्वर की ओर से थी, अतः उनको अस्वीकार करने का अर्थ था परमेश्वर को अस्वीकार करना। अध्याय 4 और 5 में वह स्पष्ट कह देता है कि उसका त्याग करना परमेश्वर का त्याग करना है। क्या यह यीशु की तुलना परमेश्वर के साथ नहीं है? कौन कहता है कि बाइबल यीशु को परमेश्वर के तुल्य नहीं दर्शाती है? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय और उसके 17 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। भजन संहिता 34 उसके 8 में कहा गया है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे मित्रों, यीशु ने चुनौती दी कि परमेश्वर की इच्छा पर चलकर उसके वचन को परख लो। किसी ने कहा है कि प्रेम पाने के लिए मानवीय ज्ञान को ग्रहण करो, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को प्रेम द्वारा ही समझा जाता है। इसके चरण हैं ज्ञान, प्रेम, आज्ञा पालन। यही यीशु आपसे भी चाहता है। यीशु कहता है कि परख कर देखो कि उसकी बातें परमेश्वर से है या स्वयं से। यही परमेश्वर के वचन का चमत्कार है। मेरे मित्रों, यदि आपके मन में इच्छा है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे आपके लिए सत्यापित करेगा, यदि नहीं तो शायद नहीं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। मित्रों, ध्यान दीजिए, इससे एक प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता है? यदि मनुष्य चाहेगा तो परमेश्वर अपने वचन द्वारा उससे बात करेगा और वे प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह पिता की ओर से बोलता है। परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य उसी मनुष्य से अधिक प्रभावित होता है जो अपनी महिमा की खोज में रहता है। यदि यीशु कोई नया धर्म स्थापित करता तो वे उसके पीछे हो लेते, परंतु यीशु पिता परमेश्वर का महिमावन काम करता था। और पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मित्रों, यही कारण है कि कुछ लोग बाइबल तो पढ़ते हैं परंतु कुछ नहीं पाते। हम यूहन्ना 7 अध्याय उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? यह रूढ़िवादी का आडंबर है। यीशु ने कहा, तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। व्यवस्था महत्व रखती है क्योंकि उससे हमें अपने पाप का बोध होता है और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। पौलुस ने गलतियों को लिखा, जिसे हम 3:24 में पाते हैं, कि व्यवस्था हमें मसीह के पास लाने में हमारी शिक्षक है। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7:20-21 में, लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वे धर्म गुरुओं के षड्यंत्र से अनजान थे। यीशु बैतसैदा के कुंड पर रोगी को चंगा करने के विषय में कह रहा था। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7:22-24 में, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सप्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सप्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखकर न्याय न चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। मेरे प्रिय मित्रों, खतना मूसा से भी पुराना था। यह अब्राहम के साथ बांधी परमेश्वर की वाचा थी। व्यवस्था पालन में वे व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। यदि कोई बालक सप्त के दिन 8 का हो जाए तो व्यवस्था पालन के अधीन उसका खतना करना आवश्यक था, जो सप्त के दिन वर्जित था। यीशु न्याय न करने में पक्षपात के विरोध में था। आज हमारी भी यही समस्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:25-27 में हम पढ़ते हैं, तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। यीशु के विषय फिर से मतभेद उत्पन्न हो गया। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7:28-29 में, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे जानते हो। सत्य तो यह है कि तुम न तो मुझे जानते और न ही मेरे भेजने वाले को जानते हो। हम यूहन्ना 7:30 में पढ़ते हैं, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर देखिए कि यीशु का समय नहीं आया था, अतः वे उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:31-34 में हम पढ़ते हैं, और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु के कहने का अर्थ था कि वे उसे सही समय से पूर्व पकड़ नहीं पाएंगे। वह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में चले जाने की बातें कर रहा था, जिसके बारे में वे उलझन में पड़ गए थे। पुनरुत्थान के बाद यीशु को केवल प्रेमी हाथों ने छुआ और प्रेमी आंखों ने ही उसे देखा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:35-36 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, उनके आश्चर्य करने का अर्थ यह ना समझें कि वे जो सोचते थे कि यीशु कहीं छिप जाएगा। यह पर्व का अंतिम दिन है। इस दिन वे बहुत अधिक पानी उंडेलते हैं। यह उस बात की यादगार थी कि परमेश्वर ने निर्जन प्रदेश में उन्हें चट्टान से पानी दिया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि वह चट्टान यीशु ही था। यीशु जीवन का जल है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में पढ़ते हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यहाँ फिर मनुष्य की इच्छा का प्रश्न आता है। परमेश्वर देने को तैयार है, परंतु यदि मनुष्य चाहे तब। अपनी स्वतंत्र इच्छा का चुनाव हमें खुद करना है। यदि आप जगह जगह का पानी पीकर तृप्त नहीं हुए हैं तो यीशु के पास आए। वही वास्तविक जीवन का जल है जो आपको हमेशा के लिए दे सकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 38 और 39 पद में आगे पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। प्रिय मित्र, अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और उनमें अंतरवास किया। परिणाम स्वरूप वे एक देह हो गए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 40 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, कुछ ने उस पर विश्वास किया और वे तृप्त हुए। तब हम आगे पढ़ते हैं 7 अध्याय के 41 पद में लिखा है, औरों ने कहा, यह मसीह है, परंतु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? आज भी कुछ मनुष्य उसमें विश्वास करते हैं और कुछ विश्वास नहीं करते हैं। हम यूहन्ना 7 अध्याय के 42 और 43 पद में पढ़ते हैं, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था, सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। मित्रों, यीशु दाऊद के वंश और बैतलहम से था। उसका पहला चरण गौशाले के चरनी में पड़ा था। वह दृश्य बड़े दिन के सा सुंदर एवं विभवशाली नहीं था। उसने प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी की थी। कुछ ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। यह मतभेद उसके फिर से आने तक बना रहेगा। हम यूहन्ना 7 अध्याय उसके 44 पद में पढ़ते हैं, उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। उसका समय अभी नहीं आया था। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7 अध्याय उसके 45 और 46 पद में, तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। यहां पर ध्यान दीजिए कि एक महान गवाही, परंतु उसके शिक्षा से हमें उद्धार नहीं मिलता है। उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से ही उद्धार की प्राप्ति है। यहां पर सिपाहियों ने भी इस बात को माना कि ऐसी बातें उन्होंने नहीं सुनी है। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 7 अध्याय उसके 47 से 53 पद में, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदिमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। यहाँ पर मैं देखता हूँ, मेरे विचार में निकोदिमुस ने यीशु का विश्वास किया था। यहाँ वह यीशु के पक्ष में राय देता है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, क्या तू भी गलील का है? उनके लिए गलीलवासी तुच्छ मनुष्य थे। वे धर्मशास्त्र तो जानते थे कि गलील से कोई भविष्यवक्ता नहीं आएगा, परंतु सच तो यह है कि वह न तो गलील से था और न ही बैतलहम से था, वह महिमा से आया था। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए पुत्र दिया गया। मित्रों, वह स्वर्ग से आया था। सब अपने अपने घर चले गए। यीशु को किसी ने अपने घर नहीं बुलाया। वह जैतून पर्वत पर चला गया। उसने यरूशलेम में कभी रात नहीं बिताई थी। मेरे मित्रों, क्या आप यीशु को बाहर छोड़कर अपने घर आ गए हैं, या आपने उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके प्रेम और ज्योति में जीवन पाया है? आज मुझे और आपको निश्चित ही गंभीर रूप से इस पर सोचने की आवश्यकता है। सच में आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने घर तक आने देते हैं, लेकिन घर के बाहर उसे छोड़ देते हैं। वे नहीं चाहते कि यीशु मसीह उनके घर में आकर उनके जीवन में आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। निर्णय मुझे और आपको खुद लेना है। जिस प्रकार फरीसियों ने इस बात का इनकार किया कि क्या कोई भविष्यवक्ता गलील से आ सकता है, यह सच है कि परमेश्वर न गलील से न बैतलहम से, परंतु वह स्वर्ग से आया था, क्योंकि पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि वह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से आती है। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और इस बात को आपने जान लिया है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वह आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं। निर्णय लें और प्रभु को अपने जीवन में आने दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।